राजा दामोदर राष्ट्र के अर्थ पे सनातन गोस्वामी पार जो हमारे महान दशम आचार्य हैं उनकी टीका के आधार पर कुछ चर्चा करेंगे। अष्टकम इस शब्द का अर्थ होता है अष्ट या आठ से आता है। अष्टकम मतलब आठ चीजों से बना हुआ। कई भगवान की प्रार्थनाएं होती हैं वो अष्टकम के रूप में, जैसे गोस्वामी अष्टकम है, यमुना अष्टकम है, ऐसे दामोदर अष्टकम है। और यह जो दामोदर अष्टकम है वह पद्म पुराण में आता है। सारे पुराण जो है वह वेद्यास जी ने लिखे हैं, पर जैसे श्रीमद् भागवतम यह दो व्यक्तियों के बीच में चर्चा है, सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज, या उसके बाहर हम देखेंगे सुख गोस्वामी और नैमिषारण्य ऋषि। वैसे पद्म पुराण भी एक चर्चा है और उसके चर्चा में एक बड़ी चर्चा हो रही है और उसमें अनेक दूसरी चर्चा बताई जा रही है। तो उसमें से एक चर्चा जो हो रही है वह सत्यवत मुनि और नारद मुनि की हो रही है और उस समय दोनों महान भक्त है और वे जब चर्चा कर रहे हैं तब वे भगवान की लीला का स्मरण करें और उस समय सत्यवत मुनि की आश्चर्यता। तो यह सत्यवत मुनि में द्वारा रचित है और हमारे संप्रदाय में हमारा संप्रदाय है गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, इसमें शिव गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के प्रधान अनुयायी उन्होंने एक तत्वज्ञान के स्तर पर हमारे संप्रदाय का आधार प्रस्थापित किया। तो उन्होंने यह जो अष्टकम है इसको बड़ा महत्व दिया है और उसे बताया गया है जो हरिभक्त विलास नामक ग्रंथ है इसमें कैसे भगवान की पूजा करनी चाहिए उसके बारे में विस्तार रूप से बताने। तो उसमें और आदि ग्रंथों में बताया गया है दामोदर मां घूमने का कितना बड़ा महत्व है और उसमें थोड़ी भक्ति भी करते हैं तो उससे विशाल फल प्राप्त होता है। तो उसमें से एक पद्धति जो बताई गई है वह है इस महीने में दामोदर अष्टकम गाना और भगवान को यह अर्पण करना। तो जो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है उसमें कृष्ण की भक्ति पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। हम रामनवमी भी मनाते हैं, नरसिंह चतुर्दशी मनाते हैं। तो साधारण हिंदू समाज में जो जो दीप जो होते हैं वो एक दिन दीपावली के रूप में मनाए जाते हैं। तो दीपावली उत्सव है वह है श्री रामचंद्र जब अयोध्या लौट के आए तब उनका स्वागत करने के लिए अयोध्या वासी दीप जलाए थे। तो वह महीने के एक दिन में होता है। तो दीपावली का एक और नाम है दीपदान, पर वह दीपदान का जो भाव है वह अधिकांश हिंदू समाज में ज़्यादा नहीं किया जाता मनाया जाता है। तो दीपदान मतलब जैसे हम अन्नदान होता है या अर्थदान होता है ज्ञानदान होता है। तो हम जब ये उत्सव मनाते हैं दामोदर लीला में हम दीप प्रदान करते हैं तो भगवान को अर्पण करते हैं और फिर वह भगवान के सामने रखते हैं। तो ये दीप है वह क्या है, वास्तव में भगवान ज्ञान दीपे भास्वत, भगवान हमारे हृदय में ज्ञान दीप जलाते हैं। भक्ति इज द लाइट दैट इग्नाइट्स द वर्ल्ड विद इन, जो भक्ति जो है वह ऐसा दीप है जो हमारा अंतरंग जगत है वह पूरा उजागर कर देता है और प्रकाशमान बना देता है। तो जब हम दिया अर्पण कर रहे हैं, हम दिया अर्पण करके भगवान को सामने रखते हैं, मतलब उससे क्या भावना व्यक्त कर रहे हैं, उस तरह से भगवान हमारे हृदय में जो अंधकार है जिसके कारण हमारे हृदय में भगवान है विद्यमान है पर हम तो देख नहीं पा रहे हैं, पर भगवान हमारा अंतर जगत प्रकाशमान हो जाए और हम भगवान का दर्शन कर सकें, वह दिया अर्पण करने का भाव है। तो यह जो अष्टकम है इस पर सनातन गोस्वामी भाष्य लिखा है उसमें वह अलग अलग महत्वपूर्ण शब्दों का अर्थ बहुत ही सुंदर पद्धति से बताते हैं। तो नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम, नमामि यह जो लीला है यह बहुत ही अंतरंग बहुत ही अद्भुत लीला है, अंतरंग पार्षदों के साथ लीला कर रही है। भगवान यहाँ पे एक छोटे बालक के रूप में लीला कर रहे हैं। इस लीला में दामोदर लीला है उसमें
दूसरे भगवान भगवान जैसे प्रतीत नहीं होते, भगवान एक मानव जैसे इसीलिए कि हम उनको उनको गलत समझेंगे, साधारण बात नहीं है, ऐसे ना समझे। इसी सबसे पहले बोलते हैं नमो अम्मी, मैं प्रणाम करता हूँ, जो आदर संबोधित करता है। और किसको प्रणाम करता हूँ? नमो ईश्वरम, ईश्वरम जो भगवान है वह ये ईश्वर का अर्थ हो सकता है, कई अर्थ है। एक अर्थ हो सकता है ईश्वर का मतलब है निरंतर स्वामी, एक अर्थ हो सकता है कि वे सारे ब्रह्मांड के नियंत्रक है, सारे अस्तित्व के नियंत्रक है। तब वह एक ज्ञान के स्तर पर अर्थ होंगे, पर भक्ति के स्तर पर ईश्वर का अर्थ है कि हे प्रभु आप मेरे स्वामी, और यू आर माय लॉर्ड, कृष्णा इज नॉट जस्ट लॉर्ड, ही इज माय लॉर्ड। ईश्वर नमः ईश्वर, और कैसे ईश्वर है? सच्चिदानंद रूप, उनका जो रूप है सच्चिदानंद, सच्चिदानंद। यह संकल्पना हमें अभी की परिस्थिति में जो हमारे मांस और हड्डी का शरीर है वह सच्चिदानंद का शरीर कैसे हो सकता है, वह समझना काफी मुश्किल जाता है। कभी किसी बालक का जन्मदिन हो तो कभी केक बनाते हैं, जब केक बनाते हैं तो केक पे एक क्रीम का लेयर लगा है। मान लीजिए वो क्रीम को, क्रीम बड़ा स्वादिष्ट हुआ है, तो वो क्रीम को लेके उस बालक की जैसे ही एक आकृति बना है, तो वो जो आकृति है पूरी के रूप है वो क्रीम से ही बनाया हुआ है। तो वैसे वो जो परम सत्य है वह उस क्रीम के समान है, वह सच्चिदानंद है, सर्वव्यापी है, वह ब्रह्म है। और उस मूर्तिमान रूप में हो जाता है वह है भगवान, सच्चिदानंद। और अभी यह जो ईश्वर के भाव से पहले दर्शन से बता रहे हैं, भगवान ने अपनी लीलाएं अलग अलग जगहों पे की, गोकुल में कुछ लीलाएं की, फिर वृंदावन में कुछ लीलाएं की, फिर मथुरा में की, फिर द्वारका में की। वृंदावन शब्द के लिए अर्थ होते हैं, वृंदावन का बड़ा इलाका है जिसने एक वृंदावन नाम की जगह दी है। तो गोकुल वो जगह है जहाँ पर भगवान ने बाल लाए थे, और फिर उसके बाद में जब बहुत खतरे हो गए थे वहाँ पे, तो गोकुल से सारे परिवार से निकल के वृंदावन में आए। तो बाल लीलाओं का जो क्षेत्र है वह गोकुल है। गोकुल राजमान मतलब चमक रहे हैं, तो गोकुल राजमान का तो अर्थ हो सकता है गोकुल उनके कारण चमक रहा है, या वे गोकुल में चमक रहे हैं। तो गोकुल और जब इस तरह से भगवान के तत्व के बारे में बता रहे हैं, भगवान के नाम के बारे में बता रहे हैं, और फिर मान लीजिए कोई कैमरा से कोई देख रहा है, तो अभी भगवान पे क्लोजअप लगा है, सबसे पहले तो क्या है, भगवान के चेहरे को देखते हैं, न केवल चेहरे को देखते हैं वह उनके कान को देखते हैं, और न केवल कान को देखते हैं, कान में जो कुंडल है उसको देखते हैं। असल मतलब जो बहुत भाग्यवान है, बहुत चमकीला है, बहुत आकर्षक है, कुंडल। तो लसन जो इसको, लसन जो भगवान का कुंडल है उसको लसन क्यों बताया गया है? तो इससे है एक बहिरंग और एक अंतरंग कारण है। बहिरंग कारण है कि जो भी आभूषण है साधारणतः हम लोग आभूषण पहनते हैं ताकि हम और आकर्षण दे सकें, पर भगवान जो है आभूषण पहनते हैं और भगवान वास्तव में सर्व आकर्षक है। कोई आभूषण को पहनने की जरूरत नहीं है। भूषण भूषणम बताया गया है, उद्धव बताते हैं इस स्कंद में कि भगवान सब भूषणों के भूषण है, वही सबसे आकर्षक आभूषण है। तो इस आभूषण का इतना भाग्य है कि वो भगवान की सेवा कर पा रहा है। भगवान उसे सुशोभित नहीं होता है, वो आभूषण भगवान से चाहिए होता है। पर एक और अर्थ है इसका कि वास्तव में भगवान अलग अलग आभूषण पहनते हैं, कुछ हाथ में होता है, कुछ पैर में होता है, पर यह इकलौता ऐसा आभूषण है जिसको वो भाग्य मिल रहा है जो इस लीला की प्रधान नायिका है,
यशोदा माई का भाग्य क्या है, वो कृष्ण की माता है तो वो कृष्ण का चुंबन कर रहा है। उसी तरह से राधा उस संदर्भ में चिंतन कर रहे हैं कि जब कृष्ण दौड़ते हैं जो कुंडल में पड़ा है, जो कुंडल भी आगे की चिंता है, कुंडल उनके गाल को स्पर्श करता है, तो वो चिंतन कर रहे हैं कि कुंडल है भगवान कृष्ण के गाल का चुंबन कर रहा है।
सर कुंडल कितना भाग्य है
और ऐसा कुंडल आगे पीछे क्यों मिल रहा है।
यशोदा
पार्श्वभूमि है कि भगवान कृष्ण ने कुछ माखन के जो मटके के तोड़ दिए, माखन जो बंदरों को खिलाया था, तो यशोदा माई क्रोध हो गई, उसे दौड़ उनके बीच पकड़ने आ गई, तो वो दौड़ रही थी, तो यशोदा धीरे हो रही थी, वो यशोदा के भय के कारण दौड़ रहे थे। तो भगवान जो है सूर्य सीतापति मनपया, तो दुश्चरति मनपया, ये शास्त्र बताया है, उपनिषदों बताया है, भागवत में बताया है कि सब कुछ ब्रह्मांड चलता है वो भगवान के भय के कारण होता है। तो जो वायु होती है भगवान के भय के कारण चलती है, सूर्य सीतापति दहते अग्नि, सारे जो बड़े बड़े शक्तिशाली जो शक्तियाँ हैं ब्रह्मांड की, वो सब भगवान के भय के कारण चलती है। भगवान किसी का भय नहीं करते, पर वह अजित निर्भय भगवान जो है वह अपने मां से डर रहे हैं। यशोदा भगवान न केवल डर रहे हैं, था भगवान वो उनसे डर के मारे भाग रहे हैं। और भगवान का डरना एक भाग बड़ी बात है, उससे बड़ी बात है कि वो भाग रहे हैं। और इससे तीसरी बड़ी बात क्या है कि परामृष्ट वो भाग रहे हैं, पर उनसे और तेजी से कृष्ण में दौड़ रहे हैं। तो बाद में दशम स्कंद में ही लीला आती है कि काल हिरण नाम का एक बड़ा असुर होता है और वह आक्रमण करने आता है जब भगवान मथुरा में होते हैं। तो भगवान वो काल हिरण से युद्ध नहीं करना चाहते, वो तो इतना ये अशुद्ध है कि इसको मारूंगा तो भी उसका अशुद्धता को स्पर्श करना पड़ेगा, इसीलिए उस युद्ध के लिए भगवान चलने लगते हैं वहां से। और वो काल यवन पूरे शक्ति से दौड़ रहा है और भगवान आराम से चल रहे हैं, पर काल यवन उसको पकड़ नहीं पाते, भगवान को पकड़ नहीं पाता। क्यों? से बताया गया है कि वो जो रजोतम में रहते हैं, जो अज्ञान में रहते हैं, वो भगवान को स्पर्श ही नहीं कर सकते। तो जो पूरी शक्ति से दौड़ रहा है वो भगवान को पकड़ नहीं पा रहा है और भगवान तो आराम से चल रहे हैं, पर यहाँ पे भगवान पूरी शक्ति से दौड़ रहे हैं, फिर भी क्या हो गया? गोपी है उनका कितना भाग्य है कि उन्होंने भगवान को पकड़ लिया है। जिस पर हम पहले जो अष्टकम का भाग है उसे बताया गया किस तरह से भगवान अपने भक्त के से भयभीत होते हैं, उनसे दौड़ते हैं और दोबारा पकड़े जाते हैं। हम एक बार ये श्लोक गाएंगे और फिर हम दूसरा श्लोक।